हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol Jayam Vishnupad Paramahansa Parivraja Kacharya Shtotar Sata His Divine Grace Abhacharana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki Granth Raj Srimad Bhagavatam Dasva Skanda Nova Adhyay Mata Yashoda Dwara Krishnika Bandha Jana Shlok Sankhya Teen Kshomam Vasaha Prithu कटी तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकंप कंपम च सुभ्रुः रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंथ एक मिनट राह देखेंगे बोर्ड आ रहा है Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. देखिए, भगवान का नाम लेने से सब प्रकट हो जाता है। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुचयुगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुच युगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुच युगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। क्षौमं वासः पृथुकटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुच युगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। क्षौमं वासः पृथुकटे तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुच युगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। माता जी कोई बोलेंगे? क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्रस्नेह स्नुत कुच युगं जातकंपं च सुभ्रूः। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चल कंकणौ कुंडले च। स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालति निर्ममंथ। क्षौमं केसरीय तथा पीला मिश्रित, वासः माता यशोदा की साड़ी, पृथुकटी तटे चौड़ी कमर के चारों ओर बिभ्रति हिलती हुई सूत्र नद्धम पेटी से बंधी पुत्र स्नेह स्नुत प्रगाढ़ पुत्र प्रेम के कारण दूध से तर कुछ युगम उसके दोनों स्तन जात कंपम च क्योंकि वे सुंदर ढंग से हिल डुल रहे थे सुभ्रूह सुंदर भौहों वाली रज्जु आकर्ष मथानी की रस्सी को खींचने से श्रम परिश्रम के कारण भुज हाथों पर चलत कंकणों हिलते हुए दोनों कड़े कुंडले कान के दोनों कुंडल च भी स्विन्नम बादल जैसे काले बालों से वर्षा की तरह है चूता हुआ पसीना वक्त्रम पूरे मुखमंडल में कबर विगलत मालती उसके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे निर्ममंथ माता यशोदा दही मथ रही थी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। केसरिया पीली साड़ी पहने अपनी स्थूल कमर के करधनी बांधे माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थीं। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उसका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तात्पर्य। जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम सख्य या दास्य किसी रूप में वृंदावन वासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का कि वे क्या पहने थीं, कैसे काम कर रही थीं, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं आश्रितः क्रीडते तादृशी तद्वा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने मूल रूप में जो कि मनुष्य की भांति दिखाई पड़ता है मानुषम देहम आश्रितः, यह आश्रितः मतलब स्वीकार करना, तो ऐसे जब वो प्रकट होते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह या कृपा दिखाने के लिए होता है। क्रीडते तादृशी, और जब आके वो भज अपने भजते अपना आनंद लेते हैं ऐसे क्रीड़ाओं में ऐसे लीलाओं में, यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो ऐसे लीलाओं के बारे में सुनने के बाद हमें तत्परः भवेत, हम इनकी उनकी हृदय पूर्वक सेवा में लग जाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि इस श्लोक में भवेद शब्द का तात्पर्य, भवेद जो क्रियापद है उसका तात्पर्य है कि हमें करना चाहिए, अनिवार्य है। विधिलिंग, संस्कृत व्याकरण में इसको विधिलिंग कहते हैं। जब किसी चीज को करना ही चाहिए, एक आदेश है, इसके बारे में कोई दूसरा उपाय नहीं है, तब ऐसे विधिलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदेश देना, उत्तिष्ठ, उठो, कृपया उठिए, ये एक बात हो गया, उठो ये दूसरी बात हो गई। तो उसी प्रकार से तत्परो भवेत, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न अवतार हैं और भौतिक सृष्टि में वो अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के जो नाना प्रकार के रूप हैं, जो भिन्न योनि में प्रकट होते हैं, वो तरह तरह के प्राणियों को या जीवों को उनके प्रति अनुकूल भाव जागृत करने के लिए है और उनके उनके स्तर के हिसाब से है। यह इस भौतिक सृष्टि में जीव आध्यात्मिक प्रगति के सीढ़ी में अलग अलग स्तरों में स्थित हैं। तो भगवान कभी कभी मछली के योनि में आते हैं, हालांकि वो भगवान ही रहते हैं। कभी कछुए के योनि में प्रकट होते हैं, हालांकि वो भगवान ही रहते हैं कछुए होकर भी। और कभी कभी वो अपने मूल रूप में, जो सबसे आदि रूप कहना चाहिए, जो रूप अन्य रूपों का स्रोत है या उद्गम है, वो रूप में जब आते हैं तो हमें विशेष करके समझना चाहिए कि वो मनुष्य योनि के ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। मनुष्य रूप में भी आते हैं, फिर भी अनेक लीलाएं करते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र के रूप में भी आते हैं और कृष्ण के भी रूप में आते हैं, तो कभी द्वारका में, कभी मथुरा में। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अनेक रूपों में से भगवान का मनुष्य रूप सर्वश्रेष्ठ है और इन समस्त मनुष्य रूप की लीलाओं में से, जैसे राम, द्वारका कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण इत्यादि, इनमें से वृंदावन के श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। और वृंदावन की लीलाओं में से भी ये माधुरी लीला सर्वश्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु इस माधुरी लीला को का स्वाद लेने के लिए और इसका स्वाद अन्यों को दिलाने के लिए आए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि यह संसार में सभी लोग भौतिक रस का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे सच्चे सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भौतिक रस का आस्वादन करने से कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। तो भौतिक रस के कड़वेपन को अनेक लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं, परंतु ज्ञान नहीं है, कोई किसी श्रेष्ठ संबंध या रस का अनुभव नहीं है, न ज्ञान है, इसलिए इसी भौतिक रस में रमण करते रहते हैं, हालांकि बार बार कड़वापन इसमें आ जाता है। तो यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षण हो जाए, इनका स्वाद हमारे हृदय में लग जाए, तब ये भौतिक रस हमारे जीवन से छूट जाएंगे बड़े आसानी से। यहां इस संसार में देखा जाता है कि पुरुष और स्त्री का संबंध ये सबको बांध के रखता है, हृदय में एक गांठ बन जाती है और इसके कारण सारी दुनिया विचलित हो गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई राधा कृष्ण की लीलाओं के का श्रवण करता है तो इस संसार के जो पुरुष स्त्री के संग हैं उससे उसकी भावना से तृष्णा से वो मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यहाँ अपने बच्चों के स्नेह में बहुत लोग पीड़ित रहते हैं, आसक्त रहते हैं, भले पीड़ित आज भी नहीं हो कल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी संबंध जो है वो स्थायी रूप से रह नहीं सकता है। कोई भी संबंध यहाँ भौतिक जगत में हमें पूरी तरह से सुख प्रदान नहीं कर सकता है, इसलिए पुत्र स्नेह या पुत्री स्नेह ये भी भौतिक जगत में हमको बांध के रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण से भिन्न जिस वस्तु से जिस व्यक्ति से हम आसक्त रहते हैं वो व्यक्ति या वो वस्तु हमके पुनः हमें जन्म मृत्यु के चक्र में खींच के ले आता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ माता पिता का रूप धारण करते हैं, कृष्ण को अपना बच्चा समझते हैं, तो वो ऐसे भौतिक पुत्र पुत्री स्नेह से मुक्त हो सकते हैं और हृदय में राहत अनुभव कर सकते हैं। जो लोग इस भौतिक दुनिया में मित्र बना के मित्रों के संग में रमण करना चाहते हैं, कई धोखे भी खा जाते हैं, कड़वापन खट्टापन काफी अनुभव कर भी लेते हैं, तो ऐसी चीजों से राहत पाने के लिए उनको कृष्ण को अपना मित्र समझना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ अन्यों की सेवा करके बहुत सारे लोग असंतुष्ट रहते हैं, न सेवक संतुष्ट रहता है न मालिक संतुष्ट रहता है, तो यहाँ ऐसे अपूर्ण संबंध में रमण करने के बजाय क्यों न हम कृष्ण को ही अपना मालिक या अपना स्वामी समझें, अपना प्रभु समझें। तो ऐसे भगवान के प्रति भगवान के संबंध में दास्य रस का आस्वादन किया जा सकता है, और जो लोग भगवान के दिव्य गुणों को उनकी महानता को आदि जानते हैं, भले उनके हृदय में सेवा भावना पर्याप्त मात्रा में विकसित न हुआ हो, वो कम से कम इस भौतिक जगत के शून्यवाद निर्विशेषवाद इन सब से तो मुक्त हो सकते हैं जो व्यक्तियों को बहुत परेशान करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ के जो भी रस हैं, संबंध हैं भौतिक दुनिया में, वो विकृत संबंध हैं, इनसे कभी भी हमें स्थायी रूप से सुख नहीं मिल पाएगा। तो जो सच्चा आनंद पाना चाहता है उसे चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना एक दिव्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करे, और ऐसे संबंध की स्थापना करने से एक अनमोल अलौकिक और बहुत ही मधुर रस का स्वाद मिलेगा, जिसका स्वाद लेने से, जिसको पा के व्यक्ति कभी भी इन भौतिक रसों से युक्त संबंधों में कभी रमण नहीं करेगा, या रमण करेगा भी या संबंधों की पालन करेगा भी तो कृष्ण भावनामृत में। यहां पर वात्सल्य रस का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वैसे अक्सर ऐसे देखा जाता है कि अनेक दंपति होते हैं, पति पत्नी, उनके कोई संतान नहीं होते हैं तो वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। कई बार हमसे भी चर्चा होती है अनेक भक्तों की जिनके संतान नहीं होते हैं, तो ये तो हमारे भाग्य के ऊपर है, हमारा प्रारब्ध जैसे है वैसे हमें बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या होंगे भी तो किस तरह के बच्चे होंगे और किसने कितने दिन हमारे साथ में रहेंगे, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर होती हैं। तो भाग्य को बदलने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए कि भाग्य आज ऐसा है कल वैसे होगा, चाहे ऐसा या वैसे दोनों तरह से हमें सुख नहीं मिलने वाला है, जीवन की परिपूर्णता नहीं मिलने वाली है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भले हमारा संतान हो न हो, भले हमारे मित्र हो न हो, भले हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो न हो, कोई बात नहीं, कृष्ण तो है हमारे पास, जिनके साथ हम एक शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, जिनके पास कोई प्रेमी नहीं है, कृष्ण को समझ ले अपना प्रेमी। जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, कृष्ण को अपना बच्चा मान ले, बाल गोपाल के रूप में उनको स्वीकार करें, उनके सारे जो वात्सल्य की जो भावनाएं हैं वो सब पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगी कृष्ण में। जिनके कोई मित्र नहीं है, कृष्ण को मित्र बना लें। जिनको कोई अच्छा स्वामी नहीं मिलता है, कृष्ण को अपना स्वामी बना लें। ऐसे जो भी हमारे हृदय की भावनाएं हैं वो कृष्ण में संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं और कर सकते हैं, और सबको पूरी तरह से संतुष्ट रख सकते हैं। ये केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। यहां विशेष रूप से प्रभुपाद जी रागानुग भक्ति का वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य में। हालांकि रागानुग शब्द वो नहीं कह रहे हैं यहां पर, परंतु जिस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं ये पूरी तरह से रागानुग भक्ति का वर्णन है। तो रागानुग भक्ति क्या चीज है? वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, इसके कई स्तर होते हैं जिनके बारे में भक्त को जानना चाहिए। पहला स्तर होता है साधन भक्ति, दूसरा स्तर होता है भाव भक्ति, तीसरा स्तर होता है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति तो भक्ति की चरम सीमा है। इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये प्रेमा भक्ति बिल्कुल शत प्रतिशत शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, और ऐसे प्रेमा भक्ति में बिल्कुल कोई भौतिक कलमश नहीं है। उसके थोड़े नीचे जो भाव भक्ति का स्तर है, इसमें भी व्यक्ति का प्रेम बहुत आगे बढ़ चुका होता है, बहुत गहरा होता है, परंतु अभी तक शत प्रतिशत पूर्णता के अवस्था को प्राप्त नहीं कर चुका होता है भक्त। लेश मात्र अभी तक कुछ अनर्थ रह जाते हैं भाव भक्ति के स्तर में भी। यद्यपि भाव भक्ति के स्तर में भक्त भगवान का आमने सामने दर्शन करने के लिए योग्य हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कलमश हृदय में रह सकते हैं। और साधन भक्ति वो अवस्था है, अभ्यास की अवस्था, जब व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर चुका होता है, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो साधन भक्ति करने से साध्य की प्राप्ति होती है। तो जब प्रेमा भक्ति है उसको साध्य भक्ति कहते हैं, और जब शुरुआत की अवस्था में हम अभ्यास करते हैं, परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन और साध्य, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। साध्य भक्ति की अवस्था में जो है वो सिद्ध भक्त होते हैं, साध्य और सिद्ध। और साधन भक्ति के भी दो भाग हैं रूप गोस्वामी बताते हैं। एक को कहते हैं वैधी भक्ति, दूसरे को कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही अभ्यास के स्तर हैं, परिपूर्णता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी दोनों में काफी अंतर है, वैधी और रागानुगा। वैधी जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, ये विधि शब्द से आता है। विधि मतलब नियम, किस चीज के नियम? जो शास्त्रों में बताए हैं, जो गुरु से सुने हैं, ऐसे नियमों के आधार पर जब हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति करने की जो प्रेरणा है वो केवल शास्त्रों के आधार पर होती है, गुरु के आदेश पर होता है, और हमें भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण नहीं है तो उसे वैधी भक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण मिला हुआ नहीं है और भक्ति केवल आज्ञाकारी होकर किया जा रहा है तो उसे वैधी भक्ति कहते हैं। और धीरे धीरे ऐसे गुरुजनों के आदेश का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो रागानुगा अवस्था तक पहुंच जाते हैं। वैसे वैधी भक्ति के लिए रूप गोस्वामी कई श्लोक बताते हैं भागवत के, जैसे तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छताभयम्, जिसमें शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय बिल्कुल निडर होना चाहता है उसे चाहिए कि वो भगवान के श्री कृष्ण के बारे में, जो ईश्वर हैं, जो हरि हैं, सर्वात्मा सबके आत्मा के आत्मा हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यह वैधी भक्ति। साथ साथ रूप गोस्वामी और एक बात भी बताते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एकयोर एव किंकराः। इसका मतलब है कि हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। ये दो विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और शास्त्र में जितने भी अन्य विधियों का वर्णन है वो इन दो विधियों के दास हैं या किंकर हैं। तो ये दो श्लोक जो है वैधी भक्ति के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त वैधी भक्ति के स्तर में है उसे प्रयास करना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण करूं, कीर्तन करूं, स्मरण करूं, पढ़ूं, सेवा करूं, जिससे स्वाद उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण भक्ति के प्रति, आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। शुरुआत में आकर्षण भले न हो परंतु जब हम शास्त्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो ऐसे आदेशों का पालन करते करते एक आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति उत्पन्न हृदय में हो जाता है। और ऐसे अवस्था में फिर हम जो भक्ति करते हैं केवल इसलिए नहीं करते कि हमें बताया गया है शास्त्रों में या गुरु ने हमें बताया है इसलिए हम करेंगे, वो तो पालन करेंगे ही, परंतु पालन करने का उद्देश्य केवल उतना नहीं होता है। अब पालन करने का उद्देश्य क्या होता है कि एक स्वाभाविक स्वाद है, अपने आप ही हम करने लगेंगे इस चीज को। अनेक बार ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, उनको आदेश देके बिठाना पड़ता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है यदि उसको पढ़ाई में रुचि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि पढ़ाई के प्रति जागृत हो जाती है, फिर वो अपने आप ही पढ़ाई करने लगता है क्योंकि अभी उसको पढ़ाई में स्वाद आ गया है, अपने आप ही पाठशाला से आके किताब खोल के बैठ जाएगा, अपना गृहपाठ अपने आप कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन अब नहीं करेगा, अब तो करेगा ही, परंतु अब पढ़ाई के लिए वो माता पिता के आदेश पर निर्भर नहीं है, वो तो अपने आप भी करेगा, माता पिता को आदेश देने की जरूरत नहीं है उसको क्योंकि अभी उसको पढ़ाई में स्वाद आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो हम आदेश के ऊपर निर्भर रहते हैं, चलो जप करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कितने सारे विधि नियम हैं, तो उन सब का हम पालन करते हैं भले कभी हमारा मन न भी करे तो, क्योंकि नहीं नहीं हमें बताया गया है हमको करना चाहिए तो हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्वाद बढ़ेगा, और स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें करने लग जाएंगे। तो इस अवस्था को रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा जो शब्द है इसके दो भाग हैं, राग और अनुगा। राग मतलब मराठी में गुस्सा होता है, तो यहाँ यदि कोई रागानुगा भक्ति कहे तो कोई आदमी सोचे कि गुस्से में भगवान से भक्ति करना, नहीं। संस्कृत भाषा में राग का मतलब होता है तीव्र आसक्ति, जिस आसक्ति के कारण व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से श्री कृष्ण में समा जाता है, उसका चित्त, उसका तन मन सब कुछ कृष्णमय हो जाता है, वो तल्लीन हो जाता है कृष्ण में। तो ऐसे तीव्र आसक्ति के कारण ऐसी तल्लीनता आती है, तो इसको राग कहते हैं। परंतु ये रागानुगा भक्ति नहीं है, ये राग भक्ति है। ये राग भक्ति कौन करते हैं? जो वृंदावन के निवासी हैं, जो कृष्ण के साथ कृष्ण के पार्षद हैं, जैसे माता यशोदा हैं, अन्य गोप गोपियां हैं, वो सब राग भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्तों को एक आदर्श बना के उनके पदचिन्हों में चलना, उनका अनुगमन करना, इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। राग अनुग, अनुग अनुग मतलब अनु मतलब पीछे, और ग गमन मतलब जाना। तो राग भक्तों के पद चिन्हों में चलना, उनके पीछे पीछे चलना, इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो याद रखिए कि रागानुगा भक्त भी अभी तक अभ्यास की अवस्था में है, और जो माता यशोदा और सुबल सखा और ललिता सखी, ये सब अभ्यास की अवस्था में नहीं है, ये तो परिपूर्णता के चरम शिखर को पहुंच चुके हैं, वो तो नित्य रूप से वही निवास करते हैं उस स्तर में। तो ऐसे सिद्ध भक्तों को अपना आदर्श बना के उनके पदचिन्हों में चलने का प्रयास जब स्वाभाविक रूप से हम करते हैं, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो इस समय एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हुआ होता है, और साथ साथ एक वृंदावन के किसी भक्त को सामने हम आदर्श बना के रखते हैं। इसी बात को प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए, और सदा सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थीं, कैसे काम कर रही थीं, तो क्या कैसे पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। हालांकि जो शुरुआत भक्ति में करते हैं वो भी ऐसा चिंतन कर सकते हैं, परंतु उसको स्थायी रूप से बना नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उन्नत हो चुके भक्तों के लिए है ये। तो ये श्लोक विशेष करके प्रभुपाद जी कहते हैं उन्नत हो चुके हुए भक्तों के लिए है, जो रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं। तो उनको क्या चाहिए? कि उनको माता यशोदा जैसे भक्त का चिंतन करना चाहिए, जो वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं उनको माता यशोदा का चिंतन करना चाहिए, जो कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, हो सकता है सुबल सखा, उज्जवल सखा, मधुमंगल सखा, इनका चिंतन मनन करना चाहिए। तो जो माधुर्य भाव में उनका चिंतन करना चाहते हैं वो किसी मंजरी का या गोपी का चिंतन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये स्पष्ट है, ये किसी शुरुआत भक्ति की शुरुआत करने वाले भक्त का विषय नहीं है, ये ऊंचा है। फिर भी हमें जानना चाहिए ये सब चीजें हैं, ताकि आगे चल के कहां हमें जाना है ये हमारा पथ स्पष्ट हो जाए। क्योंकि हमें तो एक ही स्तर में तो हमेशा के लिए नहीं रहना है, हमें आगे 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 भक्ति में बढ़ते जाना है। तो आगे चल के चल के चल के हमें क्या क्या सब करना होगा हमारे भक्ति के पथ में, इन सब चीजों को हमें जान लेना चाहिए। यदि प्रभुपाद जी चाहते कि हम इन चीजों को नहीं जाने तो बोलते क्यों वो इतने अपने तात्पर्यों में। जब उन्होंने इतने विस्तार में ये तात्पर्य लिखा है तो इसका मतलब है कि वो अपेक्षा करते हैं कि हम सब इन चीजों को जाने, लेकिन हाँ कृत्रिम रूप से नहीं। और दूसरी जो बात यहाँ प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि हमें माता यशोदा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, माता यशोदा के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ भी प्रभुपाद जी कहते हैं और दूसरी जगह भी भक्ति रसामृत सिंधु के तात्पर्यों में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है वो मायावादी कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि नंद महाराज बनना चाहे, माता यशोदा बनना चाहे, सुबल सखा बनना चाहे तो वो ही मायावाद है। तो भले हम इन भक्तों को आदर्श बनाएं, परंतु इनके पदचिन्हों में चल के। तो इस प्रकार से रागानुगा भक्ति होती है। और उपदेश अमृत में भी, जो कि एक प्राथमिक ग्रंथ है, सब शुरुआत के भक्तों को ही पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, उसमें भी भगवान के बारे में ऐसे चिंतन करने का आदेश दिया गया है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमित्युपदेश सारम। रूप गोस्वामी इस उपदेश अमृत के श्लोक में कहते हैं, तन मतलब उनका, कृष्ण का नाम रूप चरितादि, भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनके गुण, उनके लीला आदि के बारे में सुकीर्तन, हमें अच्छी तरह से, सु मतलब अच्छी तरह से, हृदय से, श्रद्धा से हमें कीर्तन करना चाहिए। स्मृत्योह स्मरण करना चाहिए। क्रमेण मनसा रसना मनसि नियोज्य, हमारे जिह्वा को, हमारे मन को ऐसे नियोजित करना चाहिए कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में। और इस प्रकार हमें तिष्ठन व्रजे, हमें व्रज में निवास करना है। हम वृंदावन में जाके नहीं रह सकते तो अपने निवास स्थान को व्रज बनाना है। और जो यहाँ मंदिर है, जो भी व्रज भूमि है, यहाँ बार बार आना चाहिए व्रज का भाव स्वीकार करने के लिए। तो तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी मतलब ऐसे कोई अनुरागी भक्त होते हैं वृंदावन के, जन ऐसे जनों के अनुगामी हमें बनना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा समय बीतना चाहिए। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, कि सार समस्त उपदेशों का सार यही है कि कालम नयेद अखिलम, हमारा अखिल समय 24 घंटे हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो ये श्लोक उपदेशामृत में भी रागानुग भक्ति का ही वर्णन है ये। तो हालांकि हम बार बार ये रागानुग शब्द सुनते नहीं हैं और बार बार प्रवचनों में बोला भी नहीं जाता, क्योंकि लोग कृत्रिम अवस्था में इधर उधर कुछ करने का प्रयास न करें, इसलिए फिर भी हमारे प्राथमिक ग्रंथों में भी इन चीजों का उल्लेख अवश्य है। इसलिए हमें इनको जान लेना चाहिए कि आगे आगे बढ़ के हमें ऐसे अवस्था को प्राप्त करना है, इस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति लोभ जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। यहां दुनिया में देखा जाता है कि जब कोई बहुत प्रभावशाली या आकर्षक व्यक्ति होता है तो जनसाधारण उनका नकल करना चाहते हैं। जो सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, खास करके भारतवर्ष में, तो लोग उनके नकल बहुत करते हैं। आज किसी फिल्म के, सिनेमा के अभिनेता ने बाल इस तरह से कर लिए तो अनेक लोग अपना बाल वैसे बनाते हैं। किसी ने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए तो वो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। मुझे अभी तक याद है, हम बहुत छोटे बच्चे थे, दूसरे या पहली कक्षा में थे, तो किसी एक सिनेमा के अभिनेता ने एक तरह की टोपी पहनी थी, जिसमें वो काला टोपी था उसमें सफेद दाग थे, या सफेद टोपी जिसमें काले दाग थे, ऐसे कुछ था एक। तो ऐसे टोपी के लिए सारे बच्चे इतने पागल हो गए थे, हम भी पीछे लगे, हमको भी ऐसे टोपी चाहिए। फिर शायद मिला न मिला याद नहीं है, लेकिन हमें याद है कि हमको भी टोपी ऐसे पहननी है। क्यों? क्योंकि वो सिनेमा में सब वो उसने ऐसे टोपी पहना, अभिनेता ने वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसे बात भी करना चाहते हैं। और हम जिन बच्चों के साथ में खेलते थे वो लोग भी नकल करते थे, जैसे वो अभिनेता बात करते थे ना, वो लोग भी ऐसे अपने हाथ ये करके बोलते थे। तो ये प्रभाव है, देखिए माया कितना प्रबल, कितनी प्रबल है कि छोटे बच्चे भी इतने प्रभावित हो जाते हैं। सिनेमा के अभिनेता, क्रीड़ा खेल के अभिनेता जो खिलाड़ी हैं, तो उनकी बातचीत, उनका बोलचाल, रहन चहन, रहन सहन, उनके सारे कपड़े सब कुछ नकल करते हैं, उनका बालों का जो हेयर स्टाइल जो है उसका भी नकल करते हैं, सब कुछ। तो ये एक विकृत प्रतिबिंब है रागानुग भक्ति का। हमारे आदर्श हमें रखने चाहिए माता यशोदा, सुबल सखा, ललिता सखी, ये सब हमारे आदर्श होने चाहिए। हाँ, नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको हमारा आदर्श बना के इनके बारे में सुनना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में ध्यान करना चाहिए कृष्ण के संबंध में। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी विस्तार में बोल रहे हैं कि हमें ऐसे ध्यान करना चाहिए कि माता यशोदा कैसे कृष्ण के लिए मंथन कर रही थी। जैसे यहाँ बताया गया है अपने आज जो मात मंथन कर रही थी, हाँ, माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। तो प्रभुपाद जी अनेक जगह से बताते हैं कि माता यशोदा कैसे मथाने को खींच रही थी रस्सी से, इसके बारे में भक्तों को चिंतन करना चाहिए। कम से कम अपने घर में तो शुरू कर देना चाहिए, ग्राइंडर मिक्सर लगाने के बजाय। ये तो कम से कम इतना तो याद कर सकते हैं कि हाँ, माता यशोदा ऐसे मंथन करती थी रस्सी से, और इससे सब प्रसाद का स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ आदर्श उदाहरण माता यशोदा है। आचार्यों ने समझाया है कि वात्सल्य रस के माधुर्य की श्रेष्ठता में माता यशोदा का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे हैं नंद महाराज, तीसरे नंबर पे हैं माता रोहिणी जो बलराम की माता है, चौथे नंबर में हैं वो वरिष्ठ गोपियां जिनके पुत्र ब्रह्मा द्वारा हर लिए गए थे और गुफे में छुपा लिए गए थे, और फिर कृष्ण एक पूरे साल के लिए उन बच्चों के डुप्लीकेट बन गए, उन बच्चे ही बन गए, उनका ही रूप उन्होंने स्वीकार कर लिया, और माताओं ने बच्चों के साथ पूरे एक साल तक व्यवहार किया, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया, और कृष्ण ही उनके पुत्र बने एक साल के लिए। तो माता यशोदा, नंद महाराज, रोहिणी देवी, और फिर ये वरिष्ठ गोपियां ब्रह्म विमोहन लीला की, ये चौथे नंबर पे हैं। फिर पांचवे नंबर पे हैं जो देवकी माता, जो वास्तव में मथुरा में जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया था। छठे नंबर में हैं जो वसुदेव की अन्य 15 रानियां माता देवकी के अलावा। सातवें नंबर में हैं कुंती महारानी, जो कि वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि वो तो वसुदेव की बहन थी। आठवें नंबर में है वसुदेव, कृष्ण के पिता मथुरा में, और नौवें नंबर में है सांदीपनी मुनि, कृष्ण के आचार्य, कृष्ण के गुरु। तो ऐसे नौ भक्तों का उदाहरण दिया है, उल्लेख हुआ है, आचार्यों ने ऐसे विश्लेषण किया है कि ये क्रम है, परंतु सबसे ऊपर नंबर है माता यशोदा का, कि उनके जैसे किसी का वात्सल्य प्रेम नहीं है, न हो सकता है। लेकिन जो वात्सल्य भाव में कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, अवश्य वो माता यशोदा का चिंतन कर सकते हैं कि कैसे वो मथानी को रस्सी से खींचती थी, कैसे वो कृष्ण की सेवा करती थी। यहाँ तक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो कैसे दिखती थी, कैसे वस्त्र पहनती थी, इनका भी चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत में हमारे चित्त को पूरी तरह से मग्न कराने के लिए अनेक विषय हैं। बाहर के विषयों के चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ है इस एक ग्रंथ में, इस श्रीमद् भागवत में। बस ये हमारे पास हो जाए और इस ग्रंथ के अनुसार हमारे जीवन को हम बिताएं, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ,
बता रहे
क्या हम वरिष्ठ भक्तों का नकल कर सकते हैं? नहीं, नकल नहीं करना चाहिए, नकल किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन आदर्श बना सकते हैं और पद चिन्हों में चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, लेकिन अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण करना मतलब नकल करना, नकल करना ये कृत्रिम हो जाता है, बाह्य हो जाता है, परंतु उस भाव को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ,
कैसे साधना भक्ति के स्तर पर भक्त भगवान के नाम जा
सकता है? साधना भक्ति के किस स्तर में रह के क्या कोई भगवान के धाम में जा सकता है? साधारणतः नहीं, प्रेमा भक्ति की अवस्था में हमें पहुंचना चाहिए। जैसे दसवीं कक्षा में होकर, दसवीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद क्या किसी को डिग्री कॉलेज में मिल सकती है? तो उत्तर है साधारणतः नहीं। परंतु यदि कोई बहुत विशेष व्यक्ति हो, कोई राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो एक सम्मान देने के लिए उनको किसी विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है, आपको हम डिग्री दे रहे हैं। वैसे किसी को कृपा मिल जाए, कृपा सिद्ध हो जाए, तो भगवान के लिए क्या असंभव है? चैतन्य महाप्रभु ऐसी कृपा कर सकते हैं कि किसी को भी वो ले जा सकते हैं वापस। परंतु साधारणतः जब तक हम प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम को नहीं लौट पाएंगे। प्रश्न ये है कि हमें बताया जाता है कि हमें भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हमारे जीवन के जो भिन्न विभाग हैं उनको संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और विरक्ति भी होनी चाहिए। ये सब सारे चीजें एक साथ में कैसे हो सकती हैं, यह प्रश्न है। संतुलन का उद्देश्य क्या है? कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अनुकूल हो। यदि हम संतुलन को नहीं बनाए रखेंगे तो थोड़े समय के लिए हमें लगेगा, हो सकता है कि हम बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, परंतु वो असंतुलित अवस्था ऐसे हमें विचलित कर देगी, बाद में चल के तरह तरह की समस्याएं खड़ी कर देंगी कि प्रगति करने की बात तो दूर रही, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमारी भक्ति शायद रुक भी जा सकती है। तरह तरह की, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। कृत्रिम रूप से हमारे अवस्था से अधिक हम आगे और कुछ करने जाएंगे और जिस अवस्था में हम जी रहे हैं उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के समस्याएं बढ़ सकती हैं और ये हमारे भक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो जो पथ भक्ति मार्ग में सिखलाया गया है प्रभुपाद के उपदेशों के अनुसार, उसमें क्रमशः प्रगति करना ये अच्छा है। अच्छी तरह से अपने श्रवण कीर्तन आदि के ऊपर जोर देना, अपनी साधना को मजबूत करना और वैष्णव गुणों का अनुशीलन करने के लिए प्रयास करना, यथा नम्रता, सहनशीलता इत्यादि, और फिर अपने शरीर मन की अवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति सोचेगा मैं बहुत विरक्त होना चाहता हूं ये नींद प्रसाद आदि से, और वो जरूरत से ज्यादा अभी सेवा कर लेता है, 15 घंटे रोज सेवा करता है, फिर खाता नहीं है, बहुत कम सो लेता है, 1 घंटा 2 घंटा, मैं विरक्त होना चाहता हूँ मैं, तो कब तक ये टिक पाएगा वो? फिर उसका शरीर जवाब देगा, फिर उसको तरह तरह के कष्ट हो जाएंगे, फिर भक्ति में ही अड़चन आ जाएंगी उसकी। तो इसलिए हमें संतुलन करना चाहिए, ये बुद्धि है। बुद्धि से हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी अवस्था क्या है और उस अवस्था में रहते हुए कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, ये है संतुलन का महत्व। और कोई प्रश्न? हाँ, रागानुगा भक्ति और रूपानुग में अंतर क्या है? रागानुगा भक्ति ये भक्ति का एक स्तर है, साधन भक्ति का एक विभाग है। रूपानुग का अर्थ होता है कि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हैं। तो ये भक्ति का स्तर नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है रूपानुग। जिस मार्ग को रूप गोस्वामी ने बतलाया है उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। और कोई बात? ऐसा प्रभुपाद जी के प्रश्न ये है कि भगवान के जो भिन्न रूप हैं, कूर्म मत्स्य आदि, क्या ये भी शाश्वत रूप से भगवान के धाम में हैं? एक जगह प्रभुपाद कहते हैं हाँ, भगवान के रूप नित्य है, भगवान का कोई रूप क्षणिक नहीं है। तो इसलिए जब भगवान के रूप शाश्वत हैं तो भौतिक सृष्टि में तो नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक सृष्टि का समय समय पर विनाश होता है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये उनके धाम में ही निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।